रौनक ने हल्की आवाज में कहा था। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे इस सेल्फी वाले नाटक के बाद उसे 100% यकीन हो गया होगा कि हम वाकई कॉलेज की छुट्टियों पर आए हुए बच्चे ही हैं। बेचारे को इस बात की भी खबर नहीं होगी कि हम तो हैं, अब माँ बन चुकी हो। जैसे ही रौनक ने ये कहा, राधिका उसे टोकते हुए बोली, हेलो मैडम, जरा अपना लुक देखो, अभी भी एक नंबर की बच्ची लगती हो, और कौन कह देगा तुम्हें कि तुम एक बच्चे की माँ हो। चलो फिलहाल ये सारी बातें करने का यहाँ वक्त नहीं है, दीवारों के भी कान होते हैं, ये सारी बातें बाद में डिस्कस कर सकते हैं। फटाफट पहले अंदर चलते हैं, बहुत हो गया ड्रामा, चलो जरूर सम्राट को हमारा एक्साइटमेंट दिखाई दे गया होगा, अब फटाफट प्लान के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। ये बोलकर तेज तेज आवाज में हंसते बोलते हुए सभी लड़कियां अंदर की ओर बढ़ गई थीं। अंदर की खूबसूरती देखकर वे सब एक साथ खुशी से चिल्ला पड़ी थीं, इट्स सो ब्यूटिफुल प्लेस। उन्होंने अपनी आवाज थोड़ी तेजी रखी थी ताकि उनका हर्षोल्लास सीधे सम्राट के कानों तक पहुंच जाए और उसे जरा सा भी ये ना लगे कि लड़कियों को वहां आकर खुशी नहीं हुई है या फिर उनके लिए ये सब नया नहीं है। उसे तो यही लग रहा था कि सारी लड़कियां मिडिल क्लास घरों से आती हैं और इस तरीके का महल जैसा घर, खूबसूरत गार्डन, महंगी और एक्सपेंसिव चीजें, ये सब उन्होंने पहले कभी कहाँ देखा होगा। इसी सोच के साथ वो लगातार मुस्कुरा रहा था। फिलहाल वहीं दूसरी ओर लड़कियों की तेज आवाज किसी और के कानों में भी पड़ी थी। वो कोई और नहीं बल्कि राजवीर की बदहवास सी बीवी थी, जिसे डॉग अटैक के बाद राजवीर ने कुछ इंजेक्शन लगाए थे जिससे वो गहरी नींद में सो गई थी। अब अचानक उसकी आंख खुल गई थी, वो आसपास देखने की कोशिश कर रही थी कि इतनी जोर जोर से खुशी में चिल्लाने वाला कौन है, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक होने की वजह से ना तो वो बाहर निकल पा रही थी और ना ही इतनी तेज आवाज में बोल पा रही थी कि कोई उसके लिए दरवाजा खोल दे। फिलहाल वो चाहकर भी किसी को कुछ भी बता पाने की हालत में नहीं थी। वहीं दूसरी ओर वंशिका इस वक्त कहीं और नहीं बल्कि ध्रुव के साथ अस्पताल में प्रशांत जी के ठीक सामने मौजूद थीं। प्रशांत जी मुस्कुराते हुए वंशिका को देख रहे थे और बोले थे, थैंक यू सो मच बेटा, हमें तो लगा था कि अब हमारी आंखें सीधे स्वर्ग में ही खुलेंगी, लेकिन तुमसे मिलकर एक बार फिर अच्छा लगा। वंशिका ने मुस्कुराते हुए कहा था, आपको कुछ नहीं होगा, आप नहीं जानते आप मेरे लिए कितने स्पेशल हैं, ये कहते हुए उसकी आंखें भर आईं। तब प्रशांत जी तड़प कर बोले, बेटा प्लीज एक भी आंसू नहीं, हम तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, उन गुंडों ने हमें भले ही जिंदा छोड़ दिया हो लेकिन तुम्हारे आंसू जरूर हमारी जान ले लेंगे। ये सुनकर वंशिका आंसू पूछकर जल्दी से बोली थी, आपको कुछ नहीं होगा, और वैसे भी मैं यहाँ आपसे सिर्फ मिलने के लिए ही नहीं बल्कि आपसे बहुत सारा काम करवाने के लिए भी आई हूँ। ये बोलकर उसने जल्दी ही माहौल हल्का फुल्का किया और एक बार फिर सारी बातें प्रशांत जी के साथ डिस्कस करना शुरू कर दिया था। प्रशांत जी को ज्यादा कुछ खास याद नहीं था कि आखिर वो बेहोश कैसे हुए थे, उनके साथ क्या हुआ था। उन्हें बस इतना ही याद था कि जांच के दौरान जो लोग आए थे वे सिर्फ और सिर्फ एंटीडॉट के बारे में ही पूछ रहे थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा था, मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है लेकिन इतना जरूर समझ आया कि ये सब किसी राजनीति के तहत करवाया गया था, क्योंकि वे लोग आकर सिर्फ एंटीडॉट के बारे में ही पूछ रहे थे और उसके बारे में मुझे एक गहरा रहस्य पता चला है। ये सुनकर वंशिका चौंकते हुए बोली थी, रहस्य? कैसा रहस्य गुरुजी, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? तभी प्रशांत जी ने गहरी सांस ली और बहुत ही गुप्त शब्दों में वंशिका और ध्रुव को सब कुछ बताना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उनकी बातें समझ में आ रही थीं, वंशिका और ध्रुव के चेहरों पर एक अलग सी खुशी और चमक साफ दिखाई देने लगी थी। वंशिका खुद को रोक नहीं पाई और खुशी से उछलकर वहीं ध्रुव से लिपट गई थी। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ये कहते ही वे दोनों मुस्कुरा दिए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके हाथ कोई खजाना लग गया हो। फिलहाल जल्दी ही वंशिका ने गुरुजी की तरफ देखते हुए कहा था, सर आपको सारी चीजों का पता है कि आपने किस तरीके से वो एंटीडॉट बनाया था, बस आप मुझे उसकी सारी डिटेल्स शेयर कर दीजिए, मैं फटाफट एंटीडॉट बनाना चाहती हूँ। ये सुनकर प्रशांत जी चौंक गए थे और कुछ पूछने ही वाले थे कि वंशिका ने उन्हें रोकते हुए कहा था, मुझे हर हाल में ये एंटीडॉट बनाना ही है और वैसे भी आज ही बनाना है, आपके पास सारी चीजें अवेलेबल हैं और बाकी चीजें हम लैब से मंगवा सकते हैं। ये बोलकर उसने गुरुजी की मदद से फटाफट सारी चीजें तैयार कर ली थी, कौन सी चीज कितनी मात्रा में इस्तेमाल करनी है सब कुछ उसने ध्यान से नोट कर लिया था। इसके बाद वो बहुत खुश होकर प्रशांत जी का ढेर सारा शुक्रिया अदा करते हुए ध्रुव के साथ घर के लिए निकल गई थी। वहीं दूसरी ओर घर पर नानी माँ के साथ आकाश, सुमित और आहान मौजूद थे। अरमान उस वक्त वहां नहीं था, तभी आकाश थोड़ा परेशान होते हुए बोला था, पता नहीं हमने लड़कियों को इस तरीके से भेजकर ठीक किया या गलत, कम से कम हमें खुद सिक्योरिटी गार्ड तो उनके साथ भेज देने चाहिए थे। तभी आहान हंसते हुए बोला था, अरे आकाश भाई आप इतना परेशान क्यों होते हैं, क्या आपको नहीं पता कि मेरी हवा हवाई क्या चीज है, ऊपर से आस्था भाभी और मारिया दीदी भी साथ में हैं, उनके सामने अगर कोई आ भी जाए तो वे बड़े से बड़े बॉडी बिल्डर को एक ही झटके में सुला सकती हैं, अब टेंशन मत लीजिए वे लोग आते ही होंगे। तभी आकाश बोला था, अरे बेटा एक काम करते हैं, मैं फोन करके उनसे पूछ लेता हूँ कि कहीं किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है, राधिका को फोन कर लेता हूँ। लेकिन तुरंत नानी माँ ने मना करते हुए कहा था, अरे बेटा कैसी बातें कर रहे हो, वे लोग पूजा अर्चना में बैठे होंगे, बच्चों का दिल पहले से ही अशांक है, थोड़ा पूजा पाठ भगवान की बातें सुनेंगी, अच्छी बातें सीखेंगी तो उनके बेचैन दिल को भी करार मिल जाएगा। इस वक्त तुम्हें फोन नहीं करना चाहिए, तभी अहान ने सवाल किया था। लेकिन ये अरमान भाई, अविनाश भाई और अबीर सिंह राठौड़, ये सब कहाँ चले गए हैं, इनका कहीं कुछ पता क्यों नहीं चल रहा? तब आकाश ने रहस्यमयी अंदाज में कहा था, अरमान का तो कुछ पता नहीं कि वो कब क्या करता है, हालांकि मैंने उसके पीछे कुछ बॉडीगार्ड लगा रखे हैं बिना उसे बताए उसे फॉलो करने के लिए, क्योंकि जब से उसकी याददाश्त वापस आई है वो कुछ अजीब सा बिहेव करने लगा है। इस हालत में उसे हमेशा अकेला छोड़ना भी ठीक नहीं है, इसीलिए सेफ्टी का ध्यान रखते हुए मैंने कुछ गार्ड्स उसके पीछे लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी आप लोग भी ध्यान रखें। ये बोलकर आकाश वहां से चला गया। वहीं डाक विला में सम्राट ने सभी लड़कियों को वेलकम बुके दिए और बेहद जेंटलमैन की तरह उनसे मिला। उसकी शराफत देखकर कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि सामने खड़ा इंसान असल में एक नंबर का साइको है, जो किसी की भी बेदर्दी से जान ले सकता है और उसके खून की आखिरी बूंद तक रिसते हुए उसे मारते रहने का मंजर देख सकता है। फिलहाल आस्था ने तुरंत सम्राट से कहा, सर आपको इतनी फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं थी, आपको खामखा तकलीफ हुई सर। जैसे ही आस्था ने अपनी आवाज में छुपे गुस्से और नफरत को दबाकर एक मीठा लहजा अपनाया, सम्राट को ऐसा लगा मानो किसी ने उसके दिल पर हल्की सी गुदगुदी करती हो। वो तुरंत तिरछी नजर से आस्था को देखने लगा। एक पल के लिए आस्था उसके इस व्यवहार से अंदर ही अंदर सहम गई, क्योंकि ऐसा ही बर्ताव उसने पहले भी देखा था जब अरमान सिंघानिया उसकी जिंदगी में आया था। सम्राट भी कुछ वैसा ही व्यवहार कर रहा था, लेकिन जैसे ही सम्राट को लगा कि आस्था उसके इस अंदाज से थोड़ा घबरा रही है, वो तुरंत सीधा होकर खड़ा हो गया और बोला, आप आई ना प्लीज, और फिर वैसे भी मैंने कुछ दोस्त बनाए हैं तो उनके साथ इतना फॉर्मल होना तो बनता है ना।
ये कहते हुए सम्राट ने हंसी खुशी का माहौल बनाते हुए सबको ड्रिंक सर्व करवाया, खास तौर पर आस्था के लिए वो खुद आगे बढ़कर सर्व करने लगा। कहीं ना कहीं साड़ी में सजी आस्था को देखकर उसकी नीयत डगमगाने लगी थी। वो मन ही मन कई बार आस्था को अपने वश में करने की कल्पनाएं कर चुका था, कितनी बार उसे बेड पर पटक चुका था, लेकिन अब तक उसने उसे छुआ तक नहीं था। सब कुछ सिर्फ उसकी बीमार सोच के छोटे छोटे ख्वाबों तक सीमित था। उधर आस्था अपनी पैनी निगाहों से चारों तरफ का जायजा ले रही थी, फिर उसने सम्राट की तारीफ करते हुए कहा, सर आपका विला तो बेहद खूबसूरत है, सच बताऊं इतनी खूबसूरती मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कहीं नहीं देखी, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप मुझे अपना पूरा घर दिखा सकते हैं प्लीज। जैसे ही आस्था ने मुस्कुराते हुए ये कहा, सम्राट तो पहले ही उसकी खूबसूरती का कायल हो चुका था, वो अपनी सोचने समझने की ताकत जैसे खो बैठा था। उसके लिए ये किसी सौभाग्य से कम नहीं था। वो हल्का सा झककर बोला, ओ ये तो मेरी खुशनसीबी होगी कि आप ये विला देखना चाहती हैं। सम्राट को आस्था के सामने यूं झुकते देख उसके कुछ गार्ड्स को अचानक खांसी आने लगी। सम्राट ने उन्हें ऐसी नजर से घूरा मानो सिर्फ आंखों से ही उनका अंत कर देगा। सभी ने तुरंत अपनी नजरें झुका ली। ये पूरा दृश्य अनायास ही आस्था ने भी देख लिया और वो थोड़ा सा सहम गई, हालांकि उसने अपनी घबराहट को चेहरे पर आने नहीं दिया। उधर बाकी लड़कियां एक तरफ बैठकर हंसी खुशी का दिखावा करते हुए बातें कर रही थीं, लेकिन उनके दिलों में डर और दर्द का तूफान चल रहा था। वे चाहकर भी अपने चेहरे पर वो भय जाहिर नहीं कर सकती थीं। वे जानती थीं कि अगर उन्होंने जरा सी भी गलत हरकत की तो सम्राट के इशारे पर सब कुछ खत्म हो सकता था। चारों तरफ खड़े खतरनाक बॉडीगार्ड्स को देखकर उनका डर और भी बढ़ जाता था। फिलहाल आस्था ने जल्दी से अपने बालों को आगे किया और हल्के से अपने कान को छुआ। बाहर बैठे उसके साथी मारिया उसकी आंखों में लगे खास लेंस के जरिए पूरे घर को स्कैन कर रही थी। आस्था की आंखों में बेहद बारीक और खास तकनीक वाले लेंस लगे थे जो उसकी असली आंखों जैसे ही दिखते थे। जिस दिशा में वो देखती उस जगह का अंदर बाहर तक का दृश्य रिकॉर्ड और ट्रांसमिट हो जाता था। यहां तक कि बंद कमरों के भीतर की संरचना भी इन लेंस की मदद से समझी जा सकती थी। आस्था अब पूरी तरह सतर्क थी। वो बहाने से घर के एक एक कोने को देखने लगी थी और साथ ही अपने मिशन की हर कड़ी को चुपचाप आगे बढ़ा रही थी।